ओम शांति।
आज हम जो अव्यक्तवाणी रिवाइज करने जा रहे हैं उसकी डेट है 29 जून 1971। लेकिन हम अव्यक्तवाणी को रिवाइज करें इसके पूर्व हम आपके सामने एक सत्य घटना को रखना चाहेंगे। कुछ सालों पहले एक बार संत रामदास जी अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए समरपुर गांव में पहुंचे और समरपुर के जो गांव वाले थे वो संत रामदास जी का बड़ा आदर करते थे। तो जैसे ही संत रामदास अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने बड़े आदर से बहुत प्यार से उनका सत्कार भी किया और स्वागत भी किया और फिर उनके आसपास एकत्रित हुए उनके पवित्र वचन सुनने के लिए। फिर संत रामदास जी भी उन लोगों के सामने धर्म और आचरण की बातों को बहुत सहज रूप से रखने लगे। वो सुनते सुनते वो सारे गांव वाले जैसे भाव विभोर हो गए। तो बहुत सुंदर तरीके से ये सब चल रहा था तो अचानक एक व्यक्ति संत रामदास जी के सामने आकर खड़ा हो गया और संत रामदास जी को बहुत अपशब्द कहने लगा। तो वो सुनकर गांव वालों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वहां जो उपस्थित गांव वाले थे तो उन्होंने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया उसको रोकने का, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था और संत रामदास जी को भला बुरा कहते ही जा रहा था। लेकिन संत रामदास जी बिल्कुल शांत बैठे, उनके चेहरे पर कोई भी क्रोध का भाव नहीं आया और थोड़े समय में वो व्यक्ति वहां से चला गया। तो सभी जो सामने बैठे हुए भक्त थे या शिष्य थे वो उनसे पूछने लगे, महाराज जी आपको इतनी निरर्थक बातें सुना रहा था, कितने अपशब्द आपके लिए प्रयोग कर रहा था, तो आपको उनके ऊपर क्रोध नहीं आया या आप चुप क्यों बैठे? तो संत रामदास जी ने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये आगे चलकर मेरा बड़ा भक्त बनने वाला है। और जैसे उन्होंने एक उदाहरण सुनाया कि लौकिक दुनिया में भी कुम्हार के पास जब कोई घड़ा लेने के लिए जाता है तो उस घड़े को खरीदने से पहले कई बार 10-20 बार वो घड़े को ठोकता है, चेक करता है कि घड़ा पक्का है या नहीं, कहीं टूट तो नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि 10-20 रुपए के घड़े के लिए इतनी पी है स्वीकार करने के लिए, तो जिसको सारे जीवन भर गुरु के रूप में स्वीकार करना है तो उसकी कितनी परख होनी चाहिए। तो ये जो व्यक्ति आया था ये अपने गुरु की परख करने आया था और जब तक 10-20 गालियां किसी को सुनाए नहीं और वो जो सुने नहीं और उतनी ही धैर्यता और सहन करके उस चुप रहे तभी वो गुरुता प्रत्यक्ष होती है। तो उन्होंने कहा कि गुरु की गुरुता तभी स्वीकार होती है जब उसमें संत रामदास जी ने कहा कि जब उसमें वो जो सदाचरण की सभी लक्षण मौजूद होते हैं। तो उस व्यक्ति ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना था इसलिए उनकी ये परख थी और सच में जैसे संत रामदास जी ने कहा आगे चलकर वही व्यक्ति उनका बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो अभी हम वापस आते हैं अपनी अव्यक्त मुरली के रिवीजन पर। अब जो 29 जून 1971 की अव्यक्त मुरली है उसका टाइटल है नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। तो इस मुरली के शुरुआत में बाप दादा कह रहे हैं कि हर कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सभी जो पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उस पुरुषार्थ का वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? तो किसी ने सुनाया देवपद। तो बाबा ने कहा कि देवपद तो यह भविष्य की प्राप्ति है, वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? तो किसी ने सुनाया फरिश्तापन। तो बाबा ने कहा हाँ, लेकिन इस फरिश्ते में फिर कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो विशेष करके बाबा ने फरिश्ते की दो क्वालिफिकेशन सुनाई। फरिश्तेपन के जीवन में दो चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, एक है लाइट और एक है माइट। फिर बाबा ने कहा कि लाइट के लिए कौन सी शक्ति आवश्यक है? तो बाबा ने कहा कि लाइट के लिए विशेष नॉलेज की शक्ति चाहिए और माइट के लिए नॉलेज की शक्ति के लिए भी बाबा ने कहा कि कौन सी शक्ति चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो हम रोज मुरली द्वारा अनेक वक्ताओं द्वारा सुनते हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा अगर नॉलेज की शक्ति तभी काम करती है जो वो मनन शक्ति तक उतरती है। तो मनन शक्ति से लाइट पन प्राप्त होता है और माइट के लिए बाबा ने कहा सहन शक्ति। तो फरिश्तेपन के जीवन में ये दोनों चीजें स्पष्ट नजर आती है, नॉलेज की लाइट और माइट सहन शक्ति। तो बाबा ने कहा जिनके जीवन के अंदर ये दोनों चीजें हैं तो उनके फरिश्तेपन का साक्षात्कार चलते फिरते सबको होता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि मन के लिए चाहिए मनन शक्ति, क्योंकि मनन मन के अंदर होता है, लेकिन जब बोल और कर्म की बात आती है तो बाबा ने कहा उसके लिए चाहिए सहन शक्ति। फिर उसके पश्चात बाबा ने सहन शक्ति के 10 फायदे गिनाए, लेकिन वो 10 फायदे सुनने से पहले हम ये सोचे कि सहन शक्ति है क्या, किसे हम सहन करना कहेंगे। कई बार क्या होता है कि हम गलती करते हैं, हमसे कुछ ऊंच नीच बात हो जाती है और हम चाहते हैं कि कोई इसको टोके नहीं या उसके लिए हमें कुछ कहे नहीं, या अगर कोई कुछ कहता है तो हम चुप रहते हैं और हम अंदर में समझ लेते हैं कि मैंने बहुत सहन किया। क्या इसको सहनशीलता कहते हैं? सहन शक्ति किसको कहेंगे? जब आप पूर्णतः निर्दोष है, आपका कोई भी दोष नहीं और कोई गलत फहमी के अंदर आपके ऊपर कोई दोष का आपके ऊपर दोष थोप रहा है, ऐसे समय में आप चुप रहे, इसको हम सहनशीलता कह सकते हैं, है ना। सहन ये शब्द ऐसा है जिसको गुण के रूप में भी स्वीकारा गया है तो शक्ति के रूप में भी स्वीकारा गया है। जब सहनशीलता कहते हैं तो वो गुण बन जाता है और जब सहन शक्ति कहते हैं तो वो शक्ति बन जाता है। और हम देखते हैं कि सहनशीलता या सहन शक्ति जो है वो मूलतः तीन गुणों के ऊपर आधारित है। जैसे हम दादी जानकी जी के कई क्लासेस सुनते थे तो दादी ये तीन गुण हमेशा रिवाइज कराती थी, धीरज, प्रेम और शांति। दादी हमेशा कहती कि हम सुबह सुबह ये तीन टैबलेट खा ले तो सारा दिन कोई मुश्किलात नहीं आएगी, कोई पेपर नहीं आएगा। धैर्यता, प्रेम और शांति। किसी जगह हमने पढ़ा था कि सहन करना एक वाटर टैंक की तरह है और उसके अंदर वाटर जो पानी है वो है धैर्यता। जितना अपने अंदर धैर्यता होगी उतना सहन करना सहज होगा। फिर दूसरा गुण है प्रेम, जिसको हम स्नेह भी कह सकते हैं। तो प्रेम की शक्ति, जितना ज्यादा हमारा सबके साथ, देखो हम ज्यादातर उन्हीं लोगों को टॉलरेट करते हैं या उन्हीं लोगों को सहन करते हैं जिनका हमारे साथ कुछ स्नेह होता है, है ना। फिर बाकी जो है उनको हम सहन करना पसंद नहीं करते या उनकी बातों को रोकना टोकना हम पसंद नहीं करते हैं। तो वैसे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर जहाँ आत्मिक स्नेह है वहां सहन करना सहज हो जाता है। इसके लिए हम मिसाल सुना सकते हैं एक माँ का। माँ अपने बच्चों के जब पालना करती है तो उनके कई नखरों को, कई बातों को सहन करते हुए, लेकिन उसको उस समय वो फीलिंग नहीं आती है कि मैं सहन कर रही हूँ, क्योंकि उसका अपने बच्चों के ऊपर इतना स्नेह होता है, प्यार होता है, तो जैसे उसके लिए वो मामूली चीज होती है हर बात को सहन करना। तो इसलिए सहन करने के लिए और गुण की आवश्यकता है, वो है प्रेम। और तीसरा है शांति। कहा जाता है कि अ साइलेंट माइंड एंड अ क्वाइट हार्ट ब्रिंग्स टॉलरेंस। जहां पे मन पूर्णतः शांत है वहां पे ही सहन शक्ति आ सकती है, क्योंकि शांत मन एक स्थिर पानी की तरह है, है ना, जो अपने अंदर हर बात को समा लेता है। तो इसीलिए सहनशीलता के लिए तीन क्वालिटीज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, धैर्यता, प्रेम और शांति। फिर अभी सहन किनको करना है और किन बातों को करना है, किनको करेंगे सहन? जैसे कि हाँ जी, सबको। यस, सबको तो मतलब व्यक्तियों के रूप से कहते हैं कि सहन करना है। जैसे शिलू दीदी भी जब अपने अष्ट शक्तियों की बात करती है तो वो हमेशा कहती है कि ये अष्ट शक्तियां जैसे हमारे शस्त्र है ना। तो इन जैसे कोई योद्धा होता है युद्ध के मैदान में जाता है, अगर वो बिना शस्त्र के जाए तो उसकी हार निश्चित है, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में तो आपके पास लड़ने के लिए शस्त्र तो होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास शस्त्र है लेकिन अगर आपको शस्त्रों को चलाने की नॉलेज नहीं है, है ना, तभी आप हार खा लेंगे। तीसरी बात, आपको शस्त्र चलाने भी आते हैं लेकिन सही समय पर सही शस्त्र यूज नहीं करते हैं, तभी आपकी हार निश्चित है। तो हमारे जो अष्ट शक्तियां है उसमें जो दो शक्तियां, एक है सहन करना, एक है सामना करना, ये दोनों टोटली अपोजिट है, सहन करना और सामना करना। हम कई जगह जहां सहन करना है वहां सामना कर लेते हैं और जहां सामना करना है वहां सहन कर लेते। तो उन्होंने एक ही लाइन में बहुत ये बात स्पष्ट की थी, जब आत्माओं से संबंधित कोई पेपर होते हैं तो वहां पे हमें सहन करना है। और जैसे हम सामना के लिए जैसे कई परिस्थितियां होती है जो अचानक हमारे आगे आकर खड़ी हो जाती है, उस समय हम उन परिस्थितियों का सामना करना है, है ना। तो इसीलिए जब सहन करने की बात आती है तो डेफिनेटली वो व्यक्तियों और आत्माओं से संबंधित ही होती है। लेकिन क्या सहन करना है आत्माओं का? अच्छा, उनके व्यवहार को। और अच्छे व्यवहार को तो नहीं सहन करना पड़ता है ना, संस्कारों को, पुराने स्वभाव संस्कार को हम कहेंगे। अगर अच्छे संस्कार है तो उसको सहन करने की बात नहीं है, लेकिन आत्माओं के पुराने स्वभाव संस्कार को, उनकी गलत फहमियों को। कई बार हम कुछ करते भी नहीं लेकिन उनकी गलत फहमी हो जाती है कि हमने ऐसा किया और उस रूप से वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो उनकी गलत फहमियों को और हाँ जी, मतलब व्यंग बान। अच्छा, मुझे शब्द परिचित नहीं है। अच्छा, कमेंट्स, यस कमेंट्स, टीका, हाँ, टॉन्टिंग जो करते हैं, है ना, टॉन्टिंग जो करते हैं उसको भी हमें सहन करना पड़ता है। जो हमारे ऊपर दोष लगाते रहते हैं उसको हमें सहन करना पड़ता है। और हाँ, हंसी उड़ाते हैं कभी, हाँ, हंसी मजाक करते हैं हमारे किसी बात का, उसको हमें सहन करना है। और किसी की बुरी चाल चलन हो, है ना, मतलब हमें पता पड़ता है कि ब्राह्मण है लेकिन फिर भी ब्राह्मण की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, कुछ गलत विपरीत व्यवहार कर रहा है, तभी हमको चुप बैठ के हुए देखता है, सहन करना है। हाँ, अज्ञानियों को तो माफ कर देते हैं, ज्ञानियों को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लगता है इनके पास इतना ज्ञान है फिर भी ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना। अच्छा, और हाँ, जब अपनी बात आती है तो अपने शरीर के कर्म भोगों को भी हमें सहन करना होता है, कई बार अपने स्वभाव संस्कार को भी हमें सहन करना होता है। हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन पुराने स्वभाव संस्कार इस तरह से दबे हुए हैं कि कभी ना कभी बाहर आ जाते हैं और फिर पछतावा होता है कि क्यों यूज किया, तो उस समय भी हमें अपनी उस कमजोरी को सहन करना पड़ता है। हाँ, तो पहली बात तो यहाँ जो सहन है ना, अच्छा चलो उस आगे उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हुई सहन करने की बात, किसे सहन करना है। अब सहन करने वालों की क्वालिफिकेशन क्या हुई, कैसे पता पड़ेगा कि मैं सहन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, उसके लक्षण क्या होगा, उसका प्रमाण क्या होगा। हाँ, सिर्फ चुप रहना भी सहन नहीं होता है, कई बार बाहर से तो हम चुप रहते हैं लेकिन अंदर तो तूफान मच जाता है, है ना, तो उसको भी हम सहन करना नहीं कहेंगे। हाँ, तो उसका ही प्रमाण हमें ढूंढना है कि कैसे पता पड़े कि मैं आत्मा सहनशील बनती जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। उनको बताने की जरूरत ही नहीं ना, नहीं कोई जरूरत नहीं, पुरुषार्थ अपने लिए है, हमको दिखाना थोड़ी है किसी को। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि प्रमाण की, जो दूसरों के लिए नहीं है, मैं स्वयं स्वयं को कैसे चेक करूँ कि मैं सहनशील बनती जा रही हूँ कि नहीं। हर्षित मुख, बिल्कुल, बाबा ने ये अव्यक्त मुरली में ये बातें आगे शेयर की है, लेकिन वो 10 फायदे गिनने के पहले मैं कुछ बातें जो अपने चिंतन की वो बता रही हूँ कि जो सहनशील व्यक्ति होगा उसके सर्व के साथ जो संबंध होंगे ना वो मधुर होंगे, ये प्रत्यक्षता है। हाँ जी, एग्जैक्टली, तो सहन किया है तभी तो संबंध मधुर रहे ना। वैसे तो ऐसे कोई भी संबंध नहीं है कि जिसके अंदर सहन ना करना पड़ता हो, अगर हम उनकी कमी कमजोरियों को बातों को सहन कर लेते या समा लेते अपने अंदर तो वो संबंध हमारे मधुर होते जाते हैं, है ना। तो संबंध हमारे सबके साथ मधुर होते जा रहे एक प्रमाण है कि हमारे अंदर की सहनशीलता बढ़ रही है। फिर दूसरा बात, कोई हमारा इंसल्ट करता है, हमें अपमानित करता है, उस समय अगर हमारे स्थिति के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती है, है ना, हम कोई, हाँ एक्चुअली यहाँ भी एक बात आती है, इनसाइड आउट, दो अप्रोचेस होते हैं, आपने सभी ने सुना होगा, एक होता है आउटसाइड इन, एक होता है इनसाइड आउट। ज्यादातर हम जब रिएक्ट तब करते हैं जब आउटसाइड इन अप्रोच होता है, मतलब बाहर के व्यक्तियों के स्वभाव संस्कार या प्रकृति, उसका प्रभाव हमारे ऊपर जब पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली जब हम कुछ करते हैं तो उसको हम रिएक्शन कहते हैं, है ना। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति होगा ना उसका जो अप्रोच होगा इनसाइड आउट, उसके अंदर ज्ञान का मनन चिंतन या समझ इतनी अच्छी है कि बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, व्यक्तियों के स्वभाव संस्कार कैसे भी हो, लेकिन वो अपने मनन शक्ति और समझ के आधार से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये दो अलग अलग शब्द है, एक है रिएक्ट करना, एक है रिस्पॉन्ड करना। रिएक्शन हमेशा कई बार गलत ही हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, क्योंकि वो तुरंत ली जाती है और आउटसाइड इन अप्रोच के आधार पर ली जाती है। लेकिन जो रिस्पॉन्ड होता है वो आउट इनसाइड आउट, जो मेरे अंदर के गुण विशेषता और चिंतन ज्ञान की समझ है उस आधार से मैं हर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करती हूँ, है ना। तो इसीलिए जो सहनशील व्यक्ति होगा वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अपमानित अनुभव नहीं करेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना। और क्या होगा, हर्षित मुख होगा। दूसरी बात, उसके सामने कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी परिस्थिति में वो हलचल में नहीं आएगा। हर तूफान को, परिस्थिति को, जैसे अगर हम कहें कोई भी विपरीत परिस्थिति को तूफान कहेंगे, तो हर तूफान को वो ऐसे समझेगा जैसे तोहफा है, मेरे लिए आगे बढ़ने का साधन है। कहीं किसी ने कहा हुआ है कि परिस्थितियां आने वाली विपरीत परिस्थितियां जैसे हमारे लिए दर्पण का काम करती है। दर्पण में जैसे हम अपने आप को स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी स्थिति को स्पष्ट चेक कर सकते हैं कि मेरी स्थिति कहाँ तक पहुंची है ना। तो जो सहनशील बनता जाएगा उसके लिए उस दर्पण में, परिस्थिति दर्पण में वो हमेशा देखेगा कि मैं अचल हूँ, अडल हूँ। तो ऐसे कई सारी लक्षण क्वालिफिकेशन है, प्रमाण है सहनशीलता के, जो हम और भी चर्न कर सकते हैं इसके ऊपर। अभी हम आते हैं कि बाबा ने कौन से 10 फायदे सुनाए जो हम 29 जून 1971 की अव्यक्तवाणी को रिवाइज कर रहे हैं। तो बाबा ने जब दो, बाबा ने कहा लाइट और माइट रहने के लिए, लाइट रहने के लिए मनन शक्ति और माइट स्वरूप बनने के लिए सहन शक्ति। तो बाबा ने कहा कि सहन शक्ति जिसके अंदर होगी उसको 10 फायदे होंगे। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि उसके सहन शक्ति वाली आत्मा में सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां आपे ही आते जाएंगी। उदाहरण के तौर पे सुनाया गया कि जैसे निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति, तो सहन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो बाकी शक्तियों को आपे ही अपने पीछे ले आती है। तो जो सहन शक्ति को धारण करेगा तो समझ लो सारी शक्तियां अपने आप उसके अंदर आ जाती है। फिर दूसरी बात, जो सहनशील होगा उसके अंदर बाकी गुण भी अपने आप आते जाएंगे। पहला बाबा ने कहा सर्व शक्ति आएंगी, दूसरा बाबा ने कहा सर्व गुण उस आत्मा के अंदर आते जाएंगे। जैसे हमने शुरू में सुना था कि धैर्यता, प्रेम, शांति, जैसे ये फाउंडेशन है सहनशीलता के लिए। तो ऐसे कई गुण हैं जो सहनशीलता के साथ अपने आप चले आते हैं। फिर तीसरा बात बाबा ने कही कि जो सहनशील सहन शक्ति वाली आत्मा होगी उसके बोल भी साधारण नहीं होंगे। क्यों बोल साधारण नहीं होंगे, क्या लगता है? सहनशील सहन शक्ति वाली आत्मा के बोल साधारण क्यों नहीं होंगे? सहनशाह, बाबा सहनशील आत्मा को सहनशाह भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने इतने सहन इतने व्यर्थ बोलों को सहन किया होता है कि उसको पता है कि कौन से बोल व्यर्थ है, तो कभी वो व्यर्थ बोलों का उच्चारण कर ही नहीं सकता है ना। तो वो जो भी उच्चारण करेगा अच्छे बोलों का ही उच्चारण करेगा, तो इसलिए उसके बोल भी असाधारण होते हैं। फिर चौथी बात बाबा ने सुनाई कि उनके जो कर्म भी होंगे वो बोल प्रमाण ही असाधारण कर्म होंगे, कोई साधारण कर्म नहीं करेंगे। फिर पांचवी बात बाबा ने कही कि वो जो भी कार्य करेंगे हर कार्य में सफलता को अनुभव करेंगे। अगर किसी भी सेवा में या कार्य में असफलता होती है तो बाबा ने कहा है कि वहां चेक करना पड़ेगा कि सहन शक्ति की कहीं कमी रह गई है। फिर छठवीं बात बाबा ने कही कि अव्यक्त स्थिति या शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की जो स्थिति है वो सहन शक्ति वाली आत्मा ही अनुभव कर सकती है। क्योंकि अभी के जो लेटेस्ट अव्यक्त मुरली चली थी बाबा की, जिसमें बाबा ने फरिश्ते स्वरूप की बातें की थी, तो वही फरिश्ते की बातें यहां भी की हुई, लाइट और माइट स्वरूप है ना। तो वो स्वरूप, अव्यक्त स्थिति का स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप या शुद्ध संकल्पों के स्थिति का स्वरूप हम सहन शक्ति को धारण करेंगे तभी अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि छठवीं बात उनके चेहरे पर, सॉरी सातवीं बात उनके चेहरे पर क्या होगी, चमक होगी। ये चमक कहां से आएगी? क्योंकि कहा जाता है चेहरा हमारे मन का दर्पण होता है, और सहनशील वाली आत्मा का जो मन दर्पण होता है, मन जो होता है वो बिल्कुल निर्मल बन जाता है, क्योंकि बहुत बातों को अंदर में समा लिया है, जैसे खत्म कर दिया है। तो कोई व्यर्थ ना चलने की वजह से या निगेटिव ना चलने की वजह से तो उनके चेहरे पर, उनके मन में भी वो निर्मल मन की जो परछाई वो चेहरे पर दिखाई देती है, और चेहरे पर एक सूरत में एक चमक होगी, बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने आठवीं बात कही है, पहले तो स्थिति की बात कही, फिर सूरत की बात कही, फिर बाबा ने कहा संस्कार। सहनशील आत्मा के आगे या सहन शक्ति धारण करने वाली आत्मा के आगे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा जब आएगी ना, तो बाबा ने कहा टेम्पररी उसके वो जो संस्कार है कैसे भी वो दब जाएंगे। फिर नौवीं बात बाबा ने कही कि पुरुषार्थ के मार्ग में श्रेष्ठ संकल्प चलाने के निमित्त भी सहन शक्ति बनती है। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति होगी तभी इसी पुरुषार्थ मार्ग में हम मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण कर सकते हैं। और दसवीं बात बाबा ने कही कि जितनी सहन शक्ति होगी उतना मन के व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उदाहरण की तौर पे भी देखें, अगर हमें कोई कुछ अपशब्द कह देता है तो सबसे पहला तूफान तो व्यर्थ संकल्पों के या निगेटिव संकल्पों का हमारे मन के अंदर शुरू हो जाता है, और उसको ब्रेक लगना बड़ा मुश्किल बन जाता है। लेकिन जहां सहन शक्ति है वहां व्यर्थ आते ही कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे 10 फायदे बाबा ने गिनाए। फिर उसके बाद बाबा ने बात की नंबर 1 बिजनेसमैन बनने की। तो, हाँ जी, सहन शक्ति आएगी कैसे? जैसे मैंने कहा ना कि धीरज, इन गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। एक तो अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी धैर्यता की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और एक आत्मिक स्नेह, मतलब ज्ञान का जितना मनन चिंतन अंदर में चलता रहेगा, ज्ञान की समझ मनन शक्ति के आधार से जितनी बढ़ती जाएगी उतनी सहन शक्ति आती जाएगी। ज्ञान को जिसने हजम किया है वही सहन कर सकता है, ज्ञान को सिर्फ ऊपर ऊपर से सुना और सुनाया है वो सहन करना नहीं जान सकता, लेकिन मनन शक्ति से जिसने हजम किया है वही सहन शक्ति को धारण कर सकता है। पहली बात, ये सवाल उठ ही नहीं सकता कितना सहन करना है, क्योंकि जो रियल में सहन करता है ना उसको लगता ही नहीं कि हम सहन कर रहे हैं। अगर हम कुछ किसी की बात को सुनकर चुप बैठे हैं, है ना, और समझते हैं कि देखो मैंने कितना सहन किया, देखो मैंने कितना सहन किया, तो अंदर ही अंदर वो प्रेशर कुकर का रूप ले लेता है, है ना। बाहर से तो लगता है बहुत शांत है, लेकिन अंदर में बहुत, मतलब वो जैसे बहुत बिचारा बन जाता है। इसीलिए तो आज की दुनिया में सहनशीलता को कमजोरी के रूप में लिया गया है। क्या बनना पड़ेगा? अच्छा पूर्वज बनना पड़ेगा। यस यस, बाप समानी बनना पड़ेगा एक्चुअली सहन करने के लिए, क्योंकि बाबा तो जैसे सहनशीलता का सागर है ना। बाबा रोज इतना ज्ञान सुनाता है लेकिन देखता है बच्चे फिर भी कितने नटखट बन रहे, फिर भी कितनों श्रीमत को इजीली ब्रेक करते हुए चल रहे, लेकिन बाबा फिर भी चुप बैठता है। तो बाप समान बनने का लक्ष्य है और पुरुषार्थ है तो जरूर हमारे अंदर सहनशीलता आती जाएगी। दोनों से प्रभावित नहीं होना है, ना तारीफ से प्रभावित होना है ना, क्योंकि जो अपने आप को स्वयं को बहुत अच्छी तरह से जानता है, देखो सहन शक्ति उसके अंदर आती है जो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता है। जैसे अगर कोई चलते चलते मुझे कहे कि तुम गधी हो, है ना, तो ये बात मुझे बुरी तब लगेगी जब मैं अपने आप को नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तब मैं उस व्यक्ति के बात को स्वीकार कर लूंगी कि हाँ मैं गधी हूँ, और दिल में वो बात मुझे खटकेगी या अपमानित फील कराएगी, और फिर मेरा रिएक्शन जो होगा वो उस अनुसार होगा। या मैं उसको दो सुना दूंगी, वो और चार सुनाएगा, फिर आठ सुना दूंगी, और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ बात का बतंगड़ बनता जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, तो कोई मेरी तारीफ करे या कोई मुझे गाली दे, उन दोनों बातों से मैं प्रभावित नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा इनसाइड आउट अप्रोच, नॉट आउटसाइड इन। लोग तारीफ कर रहे या गाली दे रहे उससे मैं प्रभावित ना हूं, लेकिन मैं क्या हूं उसका प्रभाव मैं दुनिया के ऊपर डालू। और कुछ सवाल? एग्जैक्टली, चॉइस। बाबा कहते हैं ना चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। डेफिनेटली ये दादा की कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आई। गधा, अच्छा गधा कहा, गधा ही कहा, उसको नजर आ रही ना, तो हाँ मैं इस रूप से ले सकती हूँ, उससे दुखी तो नहीं होना है, लेकिन चेक करना है कि उसको ऐसा क्यों लगा हुआ, क्या सच में मेरे अंदर ऐसी कोई कमी रह गई है, और रह गई तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। इसीलिए तो कहते हैं ना निंदक हमारा दोस्त होता है, सबसे बड़ा मित्र होता है। तो उसको उस रूप से लेकर फिर हम अपने अंदर वो उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी पुरुषार्थी हूँ। हाँ मैं भी पुरुषार्थी हूँ, लेकिन मैं जब स्टडी कर रही थी सहनशीलता का तो उसमें कई पेपर्स आए और मुझे लगता है कई हद तक मैं पास भी हुई। तो यही चिंतन अगर हम सारा समय अंदर में करते रहेंगे, लक्ष्य रखेंगे, तो जरूर हम सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हम जरूर प्राप्त करेंगे। अभी वो डिस्कस करेंगे तो बाबा की मुरली रह जाएगी, हमारी मुरली नहीं शुरू करेंगे। नहीं वो फिर बहुत लंबी बात हो जाती है। जैसे अभी हमारी फ्रेंड है तो नीचे, मतलब हम शांतिवन में रह रहे थे अभी कुछ दिन से, तो उसकी एक आदत बहुत पहले से है कि बहुत छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा हाँ फैलाना नहीं, जैसे सीरियसली लेती है और उसके ऊपर बार बार ऐसे आपको सुनाती है कुछ ना कुछ, जैसे हाँ टॉर्चर की तरह। यस, आप ले सकते हो। तो पहले तो मैं ना उसको फिर उसी रूप से उसको क्या सही है सिद्ध करती थी, या उसको बताती कि बात ऐसे नहीं ऐसी है, और ये जानबूझकर क्यों हमको टॉर्चर कर रही है। तो मैं उसको थोड़ा रिप्लाई करती थी एक एक बात के लिए। अभी वही फ्रेंड मेरे साथ में थी और वो ऐसे कोई छोटी मोटी बात से लेकर मेरे साथ बात कर रही थी। मुझे अंदर से लग रहा था ये जैसे मुझे एक टांग खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं तो सहनशीलता की देवी हूँ और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो कह रही है ये तो उसकी मान्यता है या उसका स्वभाव संस्कार है, उसकी वजह से मैं अपनी स्थिति खराब क्यों क्यों। और पहली बात, जो सहनशीलता धारण करता है वो कभी भी किसी बात को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि सत्य क्या है, तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस भी नहीं होती है। तो उस केस में उसी को मैंने कई बार, क्योंकि बार बार उसी के संपर्क में आ रही थी और कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी बात हो रही थी, तो मैं लगता है, मुझे लगता है वो एक एग्जांपल है कि उसको मैं कई हद तक ये कर सके। और कल ऐसे भी हो रहा था कि मैं पूरा समय तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम नीचे सेवा में है, तो मैंने सोचा था कि कल का टाइम मैं निकालूंगी थोड़ा सा चिंतन करने के लिए, बाबा की मुरली को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो मैंने अपना प्लानिंग बना लिया था और मैं सरस्वती भवन में बीच में जो सिटिंग की अरेंजमेंट है वहां बैठकर अपनी तैयारी कर रही थी, तो एक बहन मुझे देख रही थी कि मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो बार बार इधर से जाए उधर से जाए, मैं तो इग्नोर कर रही थी क्योंकि मुझे अपना टाइम सफल करना था, क्योंकि मेरे पास उतना ही टाइम था। तो फिर लेकिन वो चक्कर लगाते लगाते मेरे पास आकर बैठी और मुझे कहा, बहन आप क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैं ऐसे क्लास की तैयारी कर रही हूँ। उसने सुना भी, लेकिन फिर भी कहती है कि आपको देखकर मुझे लग रहा है मैं आपसे बात करूं। तो अभी तो वो थोड़ी दुखी लग रही थी मुझे पहले से ही, तो मैंने सोचा अभी मैं इसके साथ बात करूंगी तो पता नहीं कितना समय जाएगा और मेरे हाथ में तो इतना ही समय है। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा हाँ बहन जी कहिए। तो फिर उसने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, उनके सेंटर पे क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो मैंने अपने हिसाब से जितनी समझ है मैंने उनको सुनाया, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे बहुत अकेलेपन की फीलिंग आ रही है क्योंकि सारे चले गए हैं और मैं अकेली रह गई हूँ, तो आप, मुझे लगता है मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। तो मैंने बोला अभी इतना तो बात किया, अभी और कितना टाइम स्पेंड करे, और इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो तैयारी कब करूंगी इसके लिए। तो फिर मैंने युक्ति से उनको दो चार सोल्यूशन दे दिए और मैंने कहा कि आप बुक्स पढ़ो, चिंतन करो, क्लासेस सुनो, ऐसे कुछ कुछ करके। फिर मैंने, वैसे भी मुझे जाना ही था कुछ आगे एक सेवा के लिए, तो मैं छुट्टी लेकर चली गई। तो उस आत्मा को करीबन आधा पौना घंटा मुझे देना पड़ा, जबकि वो मैंने अपने लिए रिजर्व रखा था। तो सहन करना कोई बड़ी बात नहीं होती वैसे, कई बार सहन करना कब लगता है कि जब हमारी कोई प्लानिंग होती है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और उस प्लानिंग के अंदर कोई इंटरफियर करता है तो हमें उसको सहन करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज हमारे समय अनुसार नहीं चल सकती। हाँ जी नहीं नहीं बिचारों को बुरा लगेगा एक्चुअली वो खुद भी कह रही थी मुझे पता है आपको स्टडी करनी है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, मैं किसके पास जाऊं, ऐसे लग रहा है आपसे ही बातें करूं। तो अभी उतना उसको अंदर से फीलिंग भी है कि वो मेरा टाइम ले रही है, लेकिन फिर भी अगर वो मजबूर है तो क्या कर सकते। अच्छा, तो बाबा ने आगे एक मुरली में कहा है, 6 बजे तक टाइम है ना या उससे पहले, तो थोड़ा शॉर्ट में ही रिवाइज करेंगे आगे की मुरली। तो बाबा ने कहा, नंबर वन बिजनेसमैन बनने का सहज तरीका क्या है? हाँ जी, हाँ। तो बाबा ने कहा, अपने आप को बिजी रखना, जो अपने आप को बिजी रखना जानता है वही नंबर वन बिजनेसमैन बन सकता है, और जो नहीं रखता है तो बाबा कहते वो बिजनेसमैन कहलाने के भी लायक नहीं है। तो बिजी कहाँ रखना है, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि लौकिक जो बिजनेसमैन होते हैं कि कमाई के समय बस कमाई, उनके बुद्धि में और कोई बातें नहीं होती है, और वो कमाई के समय एक एक पैसे का कितना गुना बना देते हैं कमाई करके अपने बिजनेस के आधार से। तो वैसे बाबा कहते सबसे बिजनेसमैन तो बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी हर सेकंड और हर संकल्प द्वारा कमाई हो रही है। जितना हम हर कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो हर कदम में बाबा कहते पदम है, अगर हम एक सेकंड को भी एक श्रेष्ठ संकल्प से सफल करते हैं तो भी हमारी पदमों की कमाई होती है। वो बिजनेसमैन तो कर करके कितनी कमाई करेंगे, करोड़ कमाएंगे, वे उससे थोड़ा ज्यादा और कमाएंगे, लेकिन बाबा कहते यहाँ तो पदमों की कमाई है और ये कमाई सारा कल्प हमारे साथ चलने वाली है। तो इसीलिए हमें बहुत इस बिजनेस में, बाबा ने कहा कि बुद्धि सब तरफ से हटाकर बस अपने आप को ज्ञान और योग में, और स्पेशली बाबा हमेशा बिजी रखने के लिए दो बातें सुनाते हैं। कौन सी दो बातें सुनाते हैं? याद और सेवा। बाबा कहते याद और सेवा, इन दो सब्जेक्ट में जितना बिजी रहेंगे उतनी कमाई होती जाएगी। तो ये बिजनेसमैन, बाबा ने कहा फिर बिजनेस की, बिजनेसमैन बनते समय बुद्धि आपकी तो तीन तरफ से, तो बाबा ने कहा कि खत्म हो चुकी है, एक तो अपने पुराने स्वभाव संस्कार की तरफ से, शरीर के हिसाब किताब की तरफ से, या मन के व्यर्थ संकल्प की तरफ से। बाबा ने कहा जैसे यहाँ पे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लग गई है, तो इसलिए आपकी पूरी बुद्धि अभी फोकस है कि कमाई करनी है, हर संकल्प और हर सेकंड में कमाई करनी, तभी हम नंबर वन बिजनेसमैन बन सकते हैं। दूसरी पॉइंट उसमें ये थी कि बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में कोई तकदीरवान होता है,
तो बाकी के जो अराउंड के सर्कमस्टांसेस है वो अकॉर्डिंगली उसके बन जाते हैं जो उसके लिए लिस्ट का काम करते, क्योंकि उसकी तकदीर में वो चीज है, तो वो प्राप्त होने के लिए वो सर्कमस्टांस भी उसके फेवर में आ जाते हैं। तो वैसे बाबा कहते हैं कि हम कल्प पहले वाली वो तकदीरवान आत्माएं हैं जिनकी ड्रामा में नूंद है। भले बाबा कहते हैं आपका स्वयं का पुरुषार्थ भी है लेकिन वो तकदीर में है, इसीलिए अपने आप ये देवी परिवार कहो या बाबा कहो हमारे लिए लिफ्ट का और गिफ्ट का काम करते हैं। फिर बाबा ने उसमें चिंतन के लिए एक बात को छेड़ा है कि हमें देवी परिवार से कौन सी गिफ्ट प्राप्त हुई है या बाबा से कौन सी गिफ्ट प्राप्त हुई है, तो उसकी भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकल सकती है। लेकिन अगर इस बात को हम सहनशीलता के साथ कनेक्ट करना चाहें कि जितना हम देवी परिवार की दुआएं लेते जाते हैं वो दुआएं मतलब ही हमारे लिफ्ट का काम करती है, क्योंकि पुरुषार्थ मार्ग में वैसे आगे बढ़ने से रोकने वाली और कोई चीज नहीं है। किसी और के स्वभाव संस्कार या अपने स्वभाव संस्कार ही हमारे राह में बाधा बनते हैं, तो जितना हम सहनशील बनते जाएंगे तो परिवार की दुआएं अपने आप हमारे खाते में जमा होती जाएगी और हमारे लिए लिफ्ट का काम करेंगी। और जो परिवार को सहन करते हैं, परिवार वालों की बातों को सहन करते हैं, तो बाबा की गिफ्ट और लिफ्ट तो हमें सदा मिलती ही रहेगी। फिर बाबा ने आगे कहा है कि सर्विस की सफलता कैसे प्राप्त होगी। जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने सवाल पूछा था कि बाप समान सर्विस के निमित्त कौन बन सकता है, किसको याद है? सबसे पहला उत्तर था सहनशील। जो सहनशील है वही बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकता है, है ना? तो उसमें भी बाबा ने यहाँ पे बाबा ने कहा है कि जब शुरू में आदि में जब सेवा शुरू हुई थी तो ज्ञान का इतना स्पष्टीकरण नहीं था, ना इतना विस्तार था, तो उस समय सेवा में सफलता कैसे प्राप्त हुई? तो उस समय बाबा ने कहा सिर्फ दो गुण थे, त्याग और स्नेह। जो हमारी दादियां थी उनके अंदर बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति इतना स्नेह था, बुद्धि की लगन सिर्फ बाबा और यज्ञ में जाती थी, उनके मुख से सिर्फ बाबा और यज्ञ की बातें निकलती थी, स्नेह बाबा का साकार, बाबा का जो स्नेह था वह जैसे रग रग में भर गया था। इसलिए जब वो सेवा के फील्ड में उतरी तो उस स्नेह के आधार से ही उन्होंने सबको सहयोगी बना लिया और उस स्नेह के आधार से वो केंद्र भी बन गए। तो बाबा ने कहा कि जैसे शुरू में हुआ था ये सेवा कि स्नेह के आधार से सबको सहयोगी बनाना और आगे बढ़ाना, तो बाबा ने कहा अंत में भी ये स्नेह की शक्ति ही सबको आगे बढ़ा सकती है। आज हम देखते हैं कि हमारे ब्राह्मण जीवन में जबकि बाबा ने हमें कहा हुआ है कि लव और लॉ का बैलेंस रखना है, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि हम लॉ को ज्यादा यूज करते हैं, लव को कम यूज करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए। छोटी छोटी बात, अगर हम अपने रूममेट के साथ भी रहते हैं तो वहां भी कई बातों को हम लॉ अनुसार चलाना चाहते कि ये चीज ऐसी रखनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये लॉ के पीछे लगते लगते हम लव की भावना को, स्नेह की भावना को भूल जाते हैं। इसीलिए ना हम स्वयं आगे बढ़ पाते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ाने के निमित्त बन सकते हैं। तो इसीलिए जहां लॉ, जहां श्रीमत का पालन करना है वहां जरूर हमें लॉफुल रहना है, लेकिन जब संबंध संपर्क में आना है तो हमें जरूर लवफुल भी रहना है। एक दूसरों की कमियों को देखते हुए, समाते हुए उनको स्नेह से आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे भी बाबा ने कहा कि स्नेह की शक्ति ने ही सबूत दिया, सर्विस की सफलता का सबूत दिया, ज्ञान को प्रैक्टिकल में उतारने का भी सबूत स्नेह की शक्ति रही। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सर्विस की सफलता का आधार स्नेह की शक्ति या कहो सहन शक्ति भी। फिर लास्ट में बाबा ने कहा है कि विदेशियों के अंदर ईश्वरीय खुमारी और खुशी बहुत रहती है और बाबा को वो देखकर बड़ी खुशी होती है। तो बाबा ने कहा कि विदेशियों को लिखो कि ये ईश्वरीय खुमारी और खुशी को सदा कंटिन्यू करे, आगे करते रहे, तो सर्विस में भी सफलता मिलती रहेगी। वहां पे बाबा ने कहा है कि आपका कमांडर भी बहुत हिम्मतवान है। तो विदेशियों का कमांडर कौन है? दादी जानकी जी की बात की थी कि वो भी बड़ा हिम्मतवान है, इसीलिए जैसे विजय का तिलक लगा ही हुआ है, विजय आपकी निश्चित है ही, तो वैसे सर्विस की बात हो या पुरुषार्थ की बात हो तो हमें दोनों बातों में सहन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा सकती है। हम ये जो मॉर्निंग का ग्रुप है, मेरे ख्याल से इसको हम तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में टीपी कहते हैं, है ना? तो टी और पी को अगर व्याख्या की जाए, टी है टॉलरेंस, पी है पेशेंस, है ना? तो अगर सच में तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो हमें टॉलरेंस और पेशेंस, इन दोनों गुणों को अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छाई से धारण करना पड़ेगा, तभी हम ये पुरुषार्थ की जो सीढ़ी है जल्दी जल्दी, तीव्र पुरुषार्थ की सीढ़ी को जल्दी जल्दी चढ़ते हुए अपने संपूर्ण मूर्ति तक पहुंच सकते हैं। कई बार हम कोर्स में भी सुनाते हैं कि, और जो मैंने पहली कहानी सुनाई उसके अंत को वापस टच करते हुए हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं, तो शुरुआत में हमने संत रामदास जी का जो एग्जाम्पल कहा था कि उन्होंने वो व्यक्ति आकर उनको अपशब्द कहने लगा, तो उन्होंने क्या कहा उसके प्रति, यही चलकर मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। तो वैसे हमारे भी पुरुषार्थ मार्ग में जो जो आत्माएं हमें कुछ सुनाने के लिए आती है, तो क्या समझना है, हाँ ऑफकोर्स शुरुआत भक्त से होगी और उसके ऊपर वो चढ़ेगा तो फिर प्रजा, फिर वारिस, फिर संबंध संपर्क, या हो सकता है हमसे भी आगे निकल जाए। लेकिन जब वो हमें अपशब्द सुना रहा है तो वो वारिस नहीं हो सकता, जब अपशब्द सुना रहा है तो वो लो लेवल पे है, हमारा सहयोगी बने, जरूरी नहीं भक्त ही कहना है, वो तो कहानी के तौर से कहा मैंने, लेकिन वो हमारे कहीं ना कहीं कनेक्शन में आने और वो हमें मानेगा कि हम पुरुषार्थी हैं, हम आगे बढ़ने वाली एक आत्मा है, तो जरूरी भी नहीं है लेकिन हर कोई जिस डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा है या हर कोई जिस फील्ड के अंदर सेवा कर रहा है, तो ऐसी कई आत्माएं हमारे सामने आएंगी जो हमारे हम सही राह पर चलते हुए भी हमें कुछ ना कुछ गलत समझेंगी या कुछ ना कुछ सुनाती रहेंगी, लेकिन उस समय में अपनी अचल अडोल अवस्था को रखते हुए हम समझेंगे कि यही आत्मा कल चलकर मेरी सहयोगी बनने वाली है, मुझे पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के निमित्त बनने वाली है, है ना। तो इस तरह से और हम कोर्स के अंदर ये भी एक बात बहुत अच्छी सुनाते हैं कि जैसे जितने भी महात्माएं बने हैं क्या बिना सहन शक्ति के बने हैं, महात्मा टाइटल लेने के लिए उन्होंने कितनी बातों को सहन किया है और हमें कौन सा टाइटल लेना है, धर्मात्मा या देवात्मा हाँ तो हमें तो देवात्मा बनना है ना। महात्माओं का देखो कि उनका बहुत रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, उनके गुणों का वर्णन किया जाता है, लेकिन महात्मा की मूर्ति को कभी मंदिर का स्थान दिया जाता है, महात्मा के जो स्टैच्यूज होते हैं या मूर्तियां होती है वो तो धूप में ऐसी खड़ी होती है, धूप में, बारिश में कुछ कुछ होता रहता है, मतलब इतनी महान आत्माएं होने के बाद भी मतलब उनको किस तरह से ये किया है, जबकि उन्होंने इतना सहन किया है, और हमारा तो विधिवत मंदिर बनने वाला है, विधिवत गायन पूजन सब कुछ होने वाला है, तो हमको तो उनसे कई गुना सहन करना पड़ेगा। अगर ये बात भी हम अपने सामने स्पष्ट रखें तो बाबा ने जो अभी के लेटेस्ट मूल्य में कहा कि संपूर्ण मूर्ति तो तैयार ही है, तो जो भी आएगा उसको ठोकने दो, जब तक ठोकेंगे नहीं हमारी संपूर्ण मूर्ति बन नहीं सकती। अच्छा ओम शांति। इस शरीर का नाम शीतल बहन है और हम पूना मीरा सोसाइटी सेंटर पे पिछले 10 साल से सेवाएं देते हैं। हाँ जी, ज्ञान में बचपन से है, बचपन से ज्ञान मार्ग में है। हाँ वैसे हाँ ये बात बहुत अच्छी है, मैं कहूंगी ज्ञान में बचपन से हूँ, लेकिन ज्ञान मुझ में पिछले 17 साल से ही है। हाँ ज्ञान मुझ में 17 साल से, क्योंकि बचपन में कोई समझ नहीं होती है, जब आपने समझ से स्टार्ट किया तो करीबन 2000 में स्टार्ट किया, तो तब से ज्ञान अंदर में थोड़ा थोड़ा भर रहे नहीं स्नेह एक्चुअली बहुत शुद्ध मोह कह सकते हैं आप इसको, अशुद्ध मोह नहीं है, अटैचमेंट अशुद्ध सॉरी अटैचमेंट को ही हम मोह कहते हैं। माँ का जो यस माँ का मैंने एक मिसाल सुनाया, ज्यादातर माँ का मोहवश वो सहन करना होता है, लेकिन यहाँ तो मोह की बात नहीं है, हम आत्मिक स्नेह के वश आत्माओं को सहन कर सकते हैं। देखो सहन करते समय वो आत्मा शरीर रूप से छोटी या बड़ी है ये मायने नहीं रखना चाहिए, वो तो वही तो पुरुषार्थ है हमारा। ओम शांति।